नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता।
दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 16 से 31 मार्च का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, समान विकास के बगैर सतत विकास अधूरा है, इसलिए बीते एक दशक में भारत ने सबका साथ सबका विकास मंत्र से सतत विकास लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए हैं। सतत विकास लक्ष्य के मानकों के आधार पर केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में अपनी योजना और नीतियों से शत प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचने की पहल से कैसे नागरिकों की सुख शांति खुशहाली और समृद्धि को जनाधिकार बना दिया है, यही हमारे संघ की आवरण कथा है। इस पर आपसे कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में विस्तृत चर्चा हुई और आज हम बात करते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के बारे में। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पद्मश्री दुलारी देवी और प्रयागराज के महाकुंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आलेख भी इसमें शामिल है। साथ ही पखवाड़े भर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है।
भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, ये हमारी सभ्यता संस्कृति की संवाहक होने के साथ आत्मा भी होती है। भाषाएं समाज में जन्म लेती हैं तो समाज के निर्माण में उतना ही अहम भूमिका भी निभाती हैं। हाल ही में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसका इंतजार देश दुनिया में फैले 12 करोड़ से अधिक मराठी भाषी लोग दशकों से कर रहे थे। भाषाओं को समृद्ध करने की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी बैर नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सदैव एक दूसरे को अपनाया और समृद्ध किया है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने पहली बार एक साथ मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को गत वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, जिसके बाद अब शास्त्रीय भाषा की संख्या हो गई है 11। नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन किसी भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई के महक के साथ साथ महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत भी है।
आप जानते हैं, भाषा केवल उसके संवाद का माध्यम भर नहीं होती है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक होती है। ये बात सही है कि भाषाएं समाज में जन्म लेती है, लेकिन भाषा समाज के निर्माण में उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। हमारी मराठी ने महाराष्ट्र और राष्ट्र के कितने ही मनुष्यों के विचारों को अभिव्यक्ति देकर हमारा सांस्कृतिक निर्माण किया है।
अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पैनल चर्चा, करीब 50 पुस्तकों का लोकार्पण, 100 बुक स्टॉल्स पर पुस्तकों की प्रदर्शनी और 2600 से अधिक कविताओं का पाठ किए जाने के साथ मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का कीर्तिगान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में 71 वर्ष के बाद आयोजित हुए मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी के सैकड़ों वर्ष के लंबे कालखंड में मराठी भाषा आक्रांताओं से मुक्ति का जयघोष बनी। वासुदेव बलवंत फड़के, लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर जैसे सेनानियों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उनके इस योगदान में मराठी भाषा और मराठी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य भी मराठी में ही लिखा। उनकी इस मराठी रचना ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ ही पथ प्रदर्शक भी है, इसीलिए साहित्य सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों की साहित्य से जुड़ी संस्थाओं की देश में अहम भूमिका है। 2027 में साहित्य सम्मेलन की इस परंपरा को 150 साल पूरे होंगे, तब 100वां सम्मेलन होगा। पीएम मोदी ने इस अवसर को विशेष बनाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभा को पहचान दें, ज्यादा से ज्यादा लोग मराठी सीखें, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भाषिणी जैसी पहल को बढ़ावा दें और इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है।
विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, समावेशी विकास, विनिर्माण विस्तार और कानूनों का सरलीकरण शामिल है। ऐसे में भारत की तेज ग्रोथ निश्चित मान रही दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए असम ने एडवांटेज असम 2.0 और मध्य प्रदेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, जहां करीब 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत, कॉरपोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, FDI नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय सहित कई अन्य पहल शामिल हैं। इसके अलावा भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों की 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च वाली PLI योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें तेजी से निवेश बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने भारत 2047 के रोड मैप के हिस्से के रूप में भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ अधिक एकीकरण की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं।
साथियों, आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में, हर लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया है। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और MSMEs को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है, और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं।
सरकार की नीति और निवेश का ही नतीजा है कि 2025 तक पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन को लेकर भारत आश्वस्त है, तो उन्नत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 85,000 इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर के शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं। ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी दुनिया के तमाम विशेषज्ञ अगर किसी एक बात को लेकर निश्चिंत हैं, तो वो है भारत की तेज ग्रोथ। भारत पर ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि आज का भारत आने वाले 25 साल और 21वीं सदी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखकर जिस तरह से काम कर रहा है, वो भरोसे का बहुत ठोस कारण है। दुनिया का भरोसा, बहुत तेजी से स्किल्ड होती भारत की युवा आबादी, गरीबी से बाहर निकली न्यू मिडिल क्लास और राजनीतिक स्थिरता और नीति निरंतरता को सपोर्ट देने वाली 140 करोड़ की आबादी पर है। पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है, और यही वजह है कि यहां के लिए कई बड़ी विशेष योजनाएं बीते एक दशक में शुरू की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए PM डिवाइन, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड और इन स्कीम्स से रोजगार के अनेक नए अवसर भी बने हैं।
निवेश यानी भविष्य की मजबूत नींव, जिससे हर सपने को मिलता है उड़न के पंख और उनको आकार देती है अनुकूल नीतियां। तेज कनेक्टिविटी, प्रचुर संसाधन और असीमित संभावनाओं के साथ देश का दिल माने जाने वाले मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जब प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया तो उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया और कहा कि दुनिया का भविष्य भारत में है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से बहुत लाभ हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है जो मुंबई के बंदरगाहों और उत्तर भारत के बंजारों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यहाँ अब 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सड़क नेटवर्क है। प्रदेश के औद्योगिक गलियारे आधुनिक एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। संस्थान का निर्माण सभी वर्ग के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस कैंसर अस्पताल में वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाएगी।
दोस्ती, विश्वास और पारस्परिक सहयोग के ऐतिहासिक संबंधों के साथ कतर मध्य पूर्व में भारत का अनन्य सहयोगी रहा है। बीते दशक में दोनों के बीच बड़ी प्रगाढ़ता की झलक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के 2 दिवसीय भारत दौरे में दिखाई दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर एयरपोर्ट पर खुद उनकी अगवानी की। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी औपचारिक भोज में उनका स्वागत करते हुए कहा कि हमारे सदियों पुराने संबंधों की झलक हमारे लोगों की पसंदीदा कला, संगीत और भोजन में देखी जा सकती है, चाहे वो बिरयानी हो या कड़क चाय। कतर की कुल आबादी में करीब 25% भारतीय प्रवासी तो भारत के गैस आयात में कतर की 70% की हिस्सेदारी दोनों ही देशों के संबंधों की मजबूती को दर्शाते हैं। यही नहीं, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की ओर विकसित और विकासशील राष्ट्र आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो कतर भी इसमें अपना योगदान बढ़ाना चाहता है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अपने भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच और मजबूत भविष्य की नींव रखी है।
भारत कतर ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कतर ने भारत में कतर निवेश प्राधिकरण QIA कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। इसका भारत सरकार ने स्वागत किया। कतर ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। कतर ने इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, निर्माण, खाद्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य और आपसी हित के अनेक क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने में रुचि व्यक्त की है। भारत में बढ़ते व्यापारिक माहौल को देखते हुए कतर ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल के कार्यक्रम में मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। और दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। मैं हूँ मुनीश शर्मा
और मैं विनीता ठाकुर, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।